एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है, राजनीतिक दर्शन।
हाँ, पॉलिटिकल फिलॉसफी। सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय है।
और इसे समझने के लिए हम देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जाने माने विचारक डेविड मिलर की दो किताबें।
जी, एक है पॉलिटिकल फिलॉसफी और दूसरी उसी का एक संक्षिप्त रूप, पॉलिटिकल फिलॉसफी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किताबें ना इस मुश्किल लगने वाले विषय को काफी आसान बना देती हैं।
बिल्कुल, पर सवाल उठता है कि ये आज जरूरी क्यों है, मतलब हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी।
देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में ही हम सरकार के फैसलों, टैक्स कानून या फिर आजादी और बराबरी जैसे मुद्दों से जूझते हैं, है ना?
हाँ, सोचते हैं कि ये सही है या गलत, निष्पक्ष है या नहीं।
बिल्कुल। तो मिलर का काम हमें इन्हीं सवालों को एक व्यवस्थित ढंग से, एक फ्रेमवर्क में समझने में मदद करता है।
ये सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं है, ये असल में ये समझने का तरीका है कि हमारा समाज कैसे काम करता है
और शायद उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक तरह से ये हमें एक ज्यादा जागरूक, एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है।
तो थोड़ी बात डेविड मिलर की हो जाए, ये हैं कौन?
हाँ, जानना जरूरी है। डेविड मिलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल थ्योरी के प्रोफेसर रहे हैं
और कोई आज के विचारक नहीं है। पिछले लगभग 40 सालों से इस फील्ड में, मतलब राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में, एक बहुत अहम आवाज रहे हैं।
और इनकी सबसे खास बात क्या लगती है आपको?
मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सिर्फ हवा हवाई, मतलब अमूर्त विचारों में नहीं खोए रहते।
हाँ, वो थ्योरी को प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ते हैं।
बिल्कुल, वो इन बड़े दार्शनिक विचारों को असल दुनिया की राजनीतिक समस्याओं और नीतियों से जोड़ते हैं, जैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो गया या सामाजिक न्याय का
या आप्रवासन इमिग्रेशन का मुद्दा।
हाँ।
वो दिखाते हैं कि इन विचारों का असर हमारी पॉलिसीज पर कैसे पड़ता है।
सही कहा। और दूसरी बड़ी बात, उनकी भाषा। वो मुश्किल विचारों को भी ना बड़ी आसानी से समझा देते हैं।
हाँ, बिना उनकी गहराई कम किए।
बिल्कुल, आम पाठक भी समझ सकता है। उनके लिखने का तरीका बहुत साफ है, संतुलित है। वो किसी भी मुद्दे के दोनों पहलू दिखाते हैं
ताकि पढ़ने वाला खुद सोचे और अपनी राय बना सके। इसी वजह से वो इस विषय को समझने के लिए एक बेहतरीन गाइड बन जाते हैं। तो अब आते हैं इन किताबों पर। ये है किस बारे में? आसान शब्दों में इनका सार क्या है?
देखिए, मूल रूप से तो ये किताबें हमें राजनीतिक दर्शन की बुनियादी बातें, उसकी ABC सिखाती हैं
और उन केंद्रीय सवालों का विश्लेषण करती हैं जो सदियों से पूछे जा रहे हैं।
हाँ, इनका मुख्य उद्देश्य यही दिखाना है कि भाई, पॉलिटिकल फिलॉसफी सिर्फ किताबों की चीज नहीं है,
बल्कि ये समाज को समझने, उसका मूल्यांकन करने और उसे शायद बेहतर बनाने का एक जरूरी जरिया है, एक टूल है।
बिल्कुल, किताब हमें उन बुनियादी सवालों की यात्रा पर ले जाती है, जैसे आखिर हमें राज्य या सरकार की जरूरत ही क्यों है,
और सरकार को हम पर शासन करने का अधिकार कहां से मिलता है, क्या ये बस ताकत का गेम है?
फिर न्याय क्या है, इंसाफ किसे कहते हैं, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का असली मतलब क्या है?
और मिलर इन सवालों को अलग अलग महान विचारकों के नजरिए से देखते हैं। हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो, मिल, रॉल्स, कई सारे।
पर सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ पुराने विचारों को दोहराते नहीं, वो उन्हें आज की बहसों से जोड़ते हैं।
हाँ, जैसे टैक्स पॉलिसी पर बहस हो या फ्री स्पीच पर या आजकल कल्चरल डाइवर्सिटी की जो बात होती है।
बिल्कुल, तो ये किताबें सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर उस आम इंसान के लिए हैं जो राजनीति के पीछे के नैतिक आधार को, मॉरल फाउंडेशन को समझना चाहता है।
ये तैयार जवाब नहीं देती पर सोचने के लिए सही सवाल जरूर उठाती हैं और तर्क करने के औजार देती हैं।
चलिए, अब कुछ मुख्य विचारों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल, राजनीतिक सत्ता यानी सरकार की जरूरत ही क्यों है?
हाँ, पॉलिटिकल अथॉरिटी। मिलर इसे समझाने के लिए स्टेट ऑफ नेचर के विचार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सोचिए, अगर कोई सरकार ना हो तो क्या होगा।
इसमें थॉमस हॉब्स का नजरिया तो काफी निराशाजनक बल्कि डराने वाला है।
हाँ, उन्होंने कहा था कि बिना राज्य के जीवन अकेला, गरीब, गंदा, क्रूर और छोटा होगा, हर कोई हर किसी के खिलाफ।
उनके हिसाब से तो बचने का एक ही रास्ता है, एक बहुत ताकतवर शासक, एक लिवायथन जो सबको डर से काबू में रखे, सुरक्षा सबसे पहले।
लेकिन फिर जॉन लॉक आए, वो इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि लोगों के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जन्म से,
जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार।
और सरकार इसलिए बनती है ताकि लोग आपसी सहमति से, कॉन्ट्रैक्ट से इन अधिकारों की रक्षा कर सकें।
जी बिल्कुल,
यहाँ जोर डर पर नहीं सहमति पर है।
बिल्कुल। और फिर आते हैं रूसो, जो जनरल विल यानी सबकी सामूहिक इच्छा की बात करते हैं।
उनके लिए असली स्वतंत्रता तब है जब लोग खुद मिलकर ऐसे कानून बनाएं जो सच में सबके भले के लिए हो।
हाँ, मतलब सामूहिक स्वशासन। सरकार इसलिए सही है क्योंकि वो हमें नागरिक के तौर पर मिलकर फैसले लेने देती है।
तो मिलर इन सबको देखते हैं और एक तरह से निचोड़ निकालते हैं कि सत्ता इसलिए वैध है, लेजिटिमेट है, क्योंकि वो हमें वो जरूरी चीजें देती है जो हम अकेले हासिल नहीं कर सकते।
हाँ, जिन्हें पब्लिक गुड्स कहते, जैसे सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, ये सब। इनके लिए एक संगठित सत्ता जरूरी है।
ठीक है, मान लिया कि सरकार जरूरी है, पर सवाल है कि सरकार हो कैसी। यहीं पर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का सवाल आता है। क्या ये वाकई शासन का सबसे अच्छा तरीका है?
इस पर भी हमेशा से बहस रही है। पुराने जमाने में जाएं तो प्लेटो जैसे महान दार्शनिक भी लोकतंत्र के आलोचक थे।
हाँ, उनका मानना था कि शासन करना एक कला है, एक हुनर। इसे विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए, जिन्हें वो फिलोसोफर किंग कहते थे।
उनके मुताबिक भीड़ के हाथ में सत्ता देना समझदारी नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ रूसो जैसे विचारक लोकतंत्र का जोरदार बचाव करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ वोट डालने या फैसले लेने का एक तरीका भर नहीं है।
हाँ, उनके लिए ये स्वशासन, आत्मसम्मान और नैतिक स्वायत्तता का प्रतीक है। ये हमें सिर्फ शासित नहीं बल्कि शासक यानी नागरिक बनाता है।
मिलर समझाते हैं कि लोकतंत्र को अच्छा मानने की दो मुख्य वजह हैं। एक तो है साधनिक वजह,
मतलब इंस्ट्रूमेंटल, यानी इससे अच्छे नतीजे निकलते हैं। जैसे तानाशाही से बचाव होता है, सरकार लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा जवाबदेह होती है।
और दूसरी वजह है आंतरिक यानी इंट्रिंसिक, मतलब लोकतंत्र अपने आप में ही मूल्यवान है,
क्योंकि ये स्वतंत्रता, समानता जैसे अहम इंसानी मूल्यों को दर्शाता है, उनका सम्मान करता है।
पर आज के लोकतंत्र की अपनी चुनौतियां भी हैं, है ना? जैसे क्या चुने हुए नेता सच में हमारी आवाज उठाते हैं?
हाँ, और समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, राजनीति में पैसे का बढ़ता असर, ये सब बड़ी समस्याएं हैं।
यहीं पर मिलर विमर्शात्मक लोकतंत्र यानी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के विचार का जिक्र करते हैं,
जिसका मतलब है कि फैसले सिर्फ बहुमत की गिनती से नहीं बल्कि आपसी बहस, तर्क वितर्क और एक दूसरे को समझने की कोशिश से होने चाहिए।
चलिए अब अगले बड़े सवाल पर आते हैं, स्वतंत्रता, फ्रीडम। सरकार हमारी जिंदगी में कहाँ तक दखल दे सकती है, इसकी सीमा क्या होनी चाहिए?
यहाँ जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत यानी हान प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
हाँ, ये बहुत सुना है। क्या कहता है ये सिद्धांत?
मिल का कहना था कि किसी व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ उस पर शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक ही सूरत में जायज है, जब उसके किसी काम से किसी दूसरे को सीधा नुकसान पहुंचने वाला हो।
अच्छा, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें उसका काम पसंद नहीं या हमें लगता है कि वो अपना ही नुकसान कर रहा है?
बिल्कुल नहीं। जब तक दूसरों को हानि न हो, व्यक्ति अपनी सोच, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जीवन शैली चुनने के लिए आजाद है।
ये सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी और अपनी तरह से जीने की आज़ादी का एक बहुत मजबूत आधार है।
लेकिन यहाँ भी पेंच है, हानि या नुकसान किसे माना जाए? क्या सिर्फ शारीरिक या आर्थिक नुकसान,
या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी हानि है? ये बहस तो आज भी बहुत चलती है, खासकर फ्री स्पीच के मामलों में।
यही पर इसाया बर्लिन का दिया हुआ फर्क समझना जरूरी हो जाता है, नकारात्मक बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता।
हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, ये क्या है?
नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है बाहरी रोक टोक, बाहरी हस्तक्षेप से आजादी, मतलब कोई मुझे कुछ करने से रोके नहीं।
ये अक्सर उन लोगों का नजरिया होता है जो सरकार का कम से कम दखल चाहते हैं, शायद जिन्हें राइट लीनिंग कहा जाता है।
हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। और दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता, इसका मतलब है अपनी क्षमता को, अपने पोटेंशियल को साकार करने की आजादी, अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेना।
इसके लिए शायद सिर्फ रोक टोक का ना होना काफी नहीं होता होगा।
सही बात, इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर जैसी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, और यहाँ शायद सरकार की भूमिका जरूरी हो जाती है मदद करने के लिए।
ये शायद ज्यादा लेफ्ट लीनिंग या सामाजिक न्याय की बात करने वालों का नजरिया है।
बिल्कुल, तो तो मिलर यही दिखाते हैं कि आजादी जैसा सीधा साधा लगने वाला शब्द भी कितना जटिल है और इसके कितने अलग अलग मायने हो सकते हैं।
और बातें हैं शायद सबसे मुश्किल और बहस वाले मुद्दे पर, न्याय यानी जस्टिस, और खासकर सामाजिक न्याय।
हाँ, समाज में संसाधनों का, अवसरों का, सम्मान का बंटवारा कैसे होना चाहिए? क्या सबको बराबर मिलना चाहिए, या जरूरत के हिसाब से, या काबिलियत के हिसाब से?
इसमें एक नजरिया तो फ्रेडरिक हायेक जैसे विचारकों का है, जो कहते हैं कि सामाजिक न्याय शब्द ही बेमानी है।
उनका तर्क है कि बाजार अर्थव्यवस्था में कौन अमीर बनता है, कौन गरीब, ये किसी योजना का नतीजा नहीं है, ये तो बस हो जाता है।
तो जैसे मौसम खराब होने को हम अन्याय नहीं कहते, वैसे ही बाजार के नतीजों को भी न्याय या अन्याय के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।
हाँ, सरकार का काम बस नियमों का पालन करवाना है, नतीजों को ठीक करना नहीं। ये एक तरह का लिबर्टेरियन नजरिया है।
लेकिन दूसरी तरफ जॉन रॉल्स का सिद्धांत है जो बहुत प्रभावशाली रहा है, न्याय यानी निष्पक्षता, जस्टिस एज फेयरनेस।
मिलर उनके मशहूर अज्ञानता के पर्दे यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस वाले विचार प्रयोग को बहुत अच्छे से समझाते हैं।
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प प्रयोग है, जरा बताइए इसके बारे में।
सोचिए, हमें एक नए समाज के बुनियादी नियम बनाने हैं, लेकिन एक शर्त है, हमें ये नहीं पता कि उस समाज में हम खुद कौन होंगे।
मतलब हमें अपनी जाति, धर्म, लिंग, अमीरी गरीबी, सेहत, हुनर कुछ नहीं पता होगा। हम एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं।
बिल्कुल, रॉल्स कहते हैं ऐसी हालत में कोई भी इंसान जोखिम नहीं लेना चाहेगा, कोई ये दाव नहीं लगाएगा कि मैं शायद अमीर या ऊंची जाति का हो जाऊं,
बल्कि हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो सबसे बुरी हालत वाले इंसान की भी रक्षा करे, क्योंकि हो सकता है वो हम ही हो।
सही, और इससे रॉल्स दो सिद्धांत निकालते हैं। पहला, हर किसी को ज्यादा से ज्यादा बुनियादी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए जो सबके लिए बराबर हों,
जैसे बोलने की आजादी, वोट देने का हक वगैरह।
हाँ, और दूसरा सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के बारे में है। ये कहता है कि असमानताएं सिर्फ दो शर्तों पर जायज हो सकती हैं।
पहली शर्त का, इनसे समाज के सबसे कमजोर तबके का सबसे ज्यादा भला होना चाहिए, इसे अंतर सिद्धांत या डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं।
और दूसरी शर्त ख, सभी पद और अवसर सबके लिए निष्पक्ष रूप से खुले होने चाहिए, मतलब मौकों की बराबरी।
ये काफी रेडिकल विचार लगता है।
हाँ, ये परिणामों की समानता पर काफी जोर देता है, लेकिन इस पर भी रॉबर्ट नोजिक जैसे लिबर्टेरियंस एतराज करते हैं।
उनका क्या कहना है?
नोजिक कहते हैं कि न्याय बंटवारे के पैटर्न में नहीं बल्कि प्रक्रिया में है। मतलब अगर किसी ने अपनी संपत्ति सही तरीके से बिना चोरी या धोखे के हासिल की है, या किसी ने उसे अपनी मर्जी से दिया है, तो वो संपत्ति उसकी है,
चाहे नतीजा कितना भी असमान क्यों ना हो।
हाँ, उनके नजरिए से अगर प्रक्रिया सही है तो नतीजा भी न्यायपूर्ण है, और इस हिसाब से अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को देना एक तरह की जबरदस्त मजदूरी है।
बाप रे, तो न्याय पर कितने अलग अलग और विरोधी विचार हैं।
बिल्कुल, और मिलर सिर्फ इन क्लासिक बहसों तक ही सीमित नहीं रहते, वो आधुनिक चुनौतियों पर भी बात करते हैं,
जैसे नारीवाद और बहुसंस्कृतिवाद।
हाँ, नारीवादी विचारकों ने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक राजनीतिक दर्शन ने निजी क्षेत्र जैसे परिवार को राजनीति से बाहर रखा था।
लेकिन वो तर्क देते हैं कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। घर के अंदर भी सत्ता के संबंध होते हैं, अन्याय और शोषण हो सकता है।
उन्होंने पारंपरिक अक्सर मर्दों के नजरिए से बने न्याय के सिद्धांतों पर सवाल उठाए और देखभाल की नैतिकता, एथिक ऑफ केयर जैसे नए विचार सामने रखे जो रिश्तों, सहानुभूति और जिम्मेदारी पर जोर देते हैं।
ये बहुत अहम बदलाव है सोच में। और बहुसंस्कृतिवाद,
मल्टीकल्चरलिज्म का सवाल है कि क्या अल्पसंख्यक समूहों को सिर्फ व्यक्ति के तौर पर बराबर अधिकार मिलना काफी है,
या फिर उन्हें अपनी सामूहिक सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए भी कुछ विशेष अधिकारों या मान्यता की जरूरत है।
ये उदारवाद के उस विचार को चुनौती देता है जो कहता है कि कानून को सबके साथ एक जैसा अंतरंग बर्ताव करना चाहिए, संस्कृति वगैरह को नजरअंदाज करके।
भारत जैसे देश के लिए जहाँ इतनी विविधता है, ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। तो इतनी सारी चर्चा के बाद कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मतलब बड़े सबक क्या हैं इन किताबों से?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे अहम बात है राजनीतिक दर्शन की व्यावहारिक प्रासंगिकता।
हाँ, ये कोई हवा हवाई चीज नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अकादमिक कसरत नहीं है, ये हमें रोजमर्रा की राजनीतिक बहसों को, जैसे आरक्षण पर बहस हो या टैक्स पर या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, ज्यादा गहराई से समझने का एक जरिया देती है।
दूसरी बात जो साफ नजर आती है वो है राजनीतिक अवधारणाओं की जटिलता।
हाँ, स्वतंत्रता, न्याय, समानता जैसे शब्द सुनने में भले ही सीधे लगें, पर इनके कोई एक सरल मायने नहीं है।
मिलर दिखाते हैं कि इन पर इतने अलग अलग विचार क्यों हैं और उनके पीछे क्या तर्क है। ये हमें अपनी खुद की मान्यताओं पर भी ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।
तीसरा अहम सबक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक सत्ता के बीच का चिरंतन तनाव।
ये संतुलन साधने की कोशिश तो हर राजनीतिक व्यवस्था को करनी पड़ती है, कितनी आजादी दी जाए और समाज के हित में कितनी रोक टोक जरूरी है।
भारत में भी हम ये लगातार देखते हैं, व्यक्तिगत अधिकारों और समुदाय या राष्ट्र के हितों के बीच की बहस।
चौथी बात है तर्क संगतता और औचित्य का महत्व।
मतलब सिर्फ अपनी राय रखना काफी नहीं है, उसे तर्क देकर सही ठहराना भी जरूरी है। क्यों एक नीति दूसरे से बेहतर है, उसके पीछे क्या नैतिक आधार है।
पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें यही सिखाती है अपनी बात को युक्ति देकर रखना।
और पांचवां जो मुझे लगता है भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है, वो है सिद्धांतों का संदर्भ के अनुसार अनुप्रयोग।
मिलर मानते हैं कि कुछ सिद्धांत शायद सार्वभौमिक हों, यूनिवर्सल हों, लेकिन उन्हें लागू करते समय हमें स्थानीय परिस्थितियों, सांस्कृतिक संदर्भों का ध्यान रखना ही पड़ता है।
हाँ, कोई एक फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं बैठता। भारत की विविधता इसका सबसे बड़ा सबूत है।
इन किताबों में कई ऐसी बातें जो सोचने पर मजबूर करती हैं, कुछ यादगार विचार या कथन।
हाँ बिल्कुल है, कुछ जो मुझे खास तौर पे याद रह गए। पहला, राजनीतिक सवाल अनिवार्य रूप से दार्शनिक सवाल होते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये कि जब भी हम ये पूछते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए या ये नीति सही है या गलत, तो हम असल में मूल्यों और सिद्धांतों पर ही विचार कर रहे होते हैं। हम फिलॉसफी ही कर रहे होते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो।
अच्छा, दूसरा विचार।
न्याय केवल परिणामों के बारे में नहीं है, बल्कि उन प्रक्रियाओं और संस्थानों के बारे में भी है जो उन परिणामों को उत्पन्न करते हैं।
ये बहुत जरूरी बात है। मतलब सिर्फ ये ना देखें कि आखिर में किसको क्या मिला, बल्कि ये भी देखें कि क्या रास्ता, क्या प्रक्रिया निष्पक्ष थी, क्या खेल के नियम सबके लिए बराबर थे।
बिल्कुल। तीसरा विचार लोकतंत्र के बारे में है। लोकतंत्र इसलिए मूल्यवान नहीं कि वो हमेशा हमें वो देता है जो हम चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें स्वशासन में सक्षम बराबरी के नागरिकों के रूप में सम्मान देता है।
वाह, ये लोकतंत्र के सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि उसके आंतरिक मूल्य, उसकी गरिमा पर जोर देता है कि वो हमें नागरिक मानता है, सिर्फ रयाया नहीं।
हाँ, चौथा विचार बहुसंस्कृतिवाद से जुड़ा है। बहुसंस्कृतिवाद की चुनौती है विविधता को समायोजित करने के तरीके खोजना, साथ ही लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए आवश्यक साझा नागरिक पहचान बनाए रखना।
ये वही संतुलन की बात है, अनेकता में एकता कैसे साधें, विविधता का सम्मान भी हो और देश एक भी रहे।
और पांचवां विचार वैश्विक न्याय के बारे में है। वैश्विक न्याय के लिए हमें अपनी नैतिक कल्पना को राष्ट्रीय सीमाओं से परे ले जाना होगा, साथ ही मानव जीवन में राजनीतिक समुदायों के विशेष महत्व को भी पहचानना होगा।
ये भी एक मुश्किल संतुलन है, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और पूरी दुनिया के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी के बीच, राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व के बीच। तो ये सब भारी भरकम बातें हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं, क्या फायदा है इन्हें समझने का?
पहला और सबसे सीधा फायदा तो ये है कि ये हमें बेहतर समाचार उपभोक्ता और नागरिक बनाता है।
कैसे?
जब हम कोई खबर पढ़ते हैं या टीवी पर बहस देखते हैं, तो हम नेताओं या विशेषज्ञों के तर्कों के पीछे छिपे दार्शनिक आधार को पहचान सकते हैं।
अच्छा, जैसे कि कोई उपयोगितावादी सबके ज्यादा से ज्यादा भले नजरिए से बोल रहा है, या समतावादी बराबरी नजरिए से, या फिर स्वतंत्रतावादी व्यक्तिगत आजादी, आपत्तिजनक है या उससे वाकई किसी को ठोस नुकसान हो रहा है।
इससे बहस ज्यादा केंद्रित और तर्कपूर्ण हो सकती है। तीसरा, सरकार की भूमिका का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है।
जैसे वो नेगेटिव बनाम पॉजिटिव स्वतंत्रता वाली बात।
हाँ, उसे समझने से हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य या शिक्षा जैसी सरकारी नीतियों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय क्यों होती है, क्यों कोई ज्यादा सरकारी दखल चाहता है और कोई कम।
चौथा, पहचान की राजनीति को समझने में मदद मिलती है। हम समझ पाते हैं कि क्यों कुछ समूह सिर्फ कानूनी बराबरी नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान के लिए भी सम्मान और समर्थन चाहते हैं।
ये हमें दूसरों के नजरिए के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है, और आखिर में सबसे जरूरी, ये हमें अधिक सोच समझकर मतदान करने में मदद कर सकता है।
कैसे?
हम उम्मीदवारों और पार्टियों से सिर्फ लोक लुभावन वादों के बजाय गहरे सवाल पूछ सकते हैं। आपका न्याय का सिद्धांत क्या है? आप किस तरह की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं? आपकी नीतियों के पीछे क्या नैतिक सोच है?
हाँ, ये हमें सतही बातों से आगे बढ़कर सोचने की ताकत देता है।
तो मेरे लिए इस सबसे बड़ी सीख यही है कि राजनीतिक मुद्दों पर गंभीरता से सोचना सिर्फ कुछ विशेषज्ञों या नेताओं का काम नहीं है,
बल्कि ये हर जिम्मेदार नागरिक के लिए जरूरी है।
हाँ, मिलर की किताबें हमें कोई पका पकाया जवाब नहीं देती, लेकिन वो हमें सोचने के, तर्क करने के बेहतर औजार जरूर देती हैं, ताकि हम खुद अपने निष्कर्ष निकाल सकें।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि सिद्धांत और व्यवहार, यानी थ्योरी और प्रैक्टिस, आपस में जुड़े हुए हैं।
सही बात है।
अच्छी राजनीति के लिए मूल्यों पर, सिद्धांतों पर स्पष्टता होना जरूरी है, और अच्छे दर्शन को, अच्छी फिलॉसफी को, जमीनी हकीकत का, असल दुनिया की जटिलताओं का ध्यान रखना होता है।
डेविड मिलर का काम हमें यही संतुलन साधना सिखाता है। वो दिखाता है कि सोचना और करना दोनों साथ साथ चलते हैं।
शायद अंतिम सवाल यही है कि हम सब अपने समाज में, अपने जीवन में, इन ऊंचे आदर्शों और रोजमर्रा की वास्तविकताओं के बीच ये संतुलन कैसे बनाते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।